नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, सिवान, झंझारपुर और महुआ में इस वर्ष होगी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत। प्रदेश में बर्फीली पछुआ हवा और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट का पूर्वानुमान। और पटना, रोहतास, सिवान समेत 5 जिलों में 16 जनवरी से नियोजन मेले का आयोजन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 50 से अधिक देशों के भारतीय मूल के सदस्य इस सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ये भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत संचालित ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह के अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न प्रदर्शनियों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कल सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेने के लिए आज भुवनेश्वर पहुंचने वाली है। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सिवान, झंझारपुर और महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी साल हो जाएगी। इन तीनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद NMC से अनुमति मिलने के बाद 500-500 बेड क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 120-120 सीटों पर नामांकन होगा। श्री पांडे ने कहा कि इन 3 मेडिकल कॉलेज के बन जाने से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा। उन्होंने पटना में कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और छात्र शिक्षक अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक के बीच होगी। तीसरे चरण में 66,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के अनुसार BPSC से आवंटित जिले में ही चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। महागठबंधन विधायक दल के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से राजद और कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। ये विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों के साथ चले गए हैं। इन सदस्यों पर पार्टी विहिप के उल्लंघन का भी आरोप है। मुलाकात के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे सदस्यों को नोटिस भेजा गया है और कार्रवाई भी की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में राजद के भाई वीरेंद्र, कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी, CPM के अजय कुमार समेत कई अन्य नेता शामिल थे। प्रदेश में भूजल क्षमता में 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की वार्षिक भूजल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भूजल क्षमता में वृद्धि से प्रदेश का भूजल 2 से 10 मीटर तक ऊपर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बिहार के बड़े हिस्सों में भूजल ऊपर आया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत भूजल संरक्षण के लिए कई स्तरों पर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नई तालाब की खुदाई, पुराने तालाबों और कुओं का जीर्णोद्धार तथा छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जय कारा महाकुंभ।
आकाशवाणी के लिए इस गीत को रतन प्रसन्ना ने गाया है और संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना का है। दूरदर्शन द्वारा निर्मित इस शीर्षक गीत महाकुंभ है को पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर ने गाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवार गौर और दूरदर्शन के महानिदेशक कंचन प्रसाद भी उपस्थित रहे। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। भूपेंद्र और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ 26 फरवरी महाशिवरात्रि को संपन्न होगा। महाकुंभ में पौष पूर्णमासी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को कुल 6 शाही स्नान होंगे। इस दौरान विश्व भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज में जुटने की संभावना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए 7,731 आवेदकों का चयन किया गया है। उद्योग विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,516 आवेदकों का प्रमाण पत्र सत्यापन में अयोग्य पाया गया। इस योजना के तहत कुल 9,247 लोगों ने आवेदन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_news_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में बर्फीली पछुआ हवा और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है। हालांकि पछुआ हवा की तेजी से कोहरे की सघनता में कमी आने के आसार हैं। विभाग के अनुसार 10 जनवरी को हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आने के साथ ही न्यूनतम तापमान में और गिरावट और घने कोहरे का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
इधर 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा लगातार 4th दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। पटना समेत अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि घने कोहरे के कारण पटना अहमदाबाद, दरभंगा अहमदाबाद तथा भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेन 15 जनवरी से 28 फरवरी तक अलग अलग तिथियों पर रद्द रहेंगी। वहीं कई ट्रेनों को परिवर्तित समय से चलाया जा रहा है। इस बीच कल पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन भी प्रभावित रहा। कई विमानों ने निर्धारित समय से देर से उड़ान भरी। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे से कल मात्र 1 विमान ने उड़ान भरी। ठंड के कारण किशनगंज, शेखपुरा, अररिया, जहानाबाद और सुपौल जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक वर्ग संचालन पर 11 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 16 जनवरी से नियोजन मेले का शुरुआत होगी। श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण के तहत पटना में 16 जनवरी, देहरी ऑन सोन में 17 जनवरी, सिवान में 18 जनवरी, भागलपुर में 20 जनवरी और सुपौल में 21 जनवरी को मेले का आयोजन होगा। ये मेला राजकीय ITI में आयोजित किया जाएगा। इसमें NIC पोर्टल पर निबंधित अभ्यर्थी सहित नए युवा भी भाग ले सकेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए ऐतिहासिक गांधी मैदान को कल से 25 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गांधी मैदान में सुबह शाम टहलने वाले लोगों का भी प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। गांधी मैदान को 26 जनवरी की सुबह आम लोगों के लिए खोला जाएगा। पटना हवाई अड्डे से 15 जनवरी से गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। पटना हवाई अड्डा प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए भी दो दो फ्लाइट 15 जनवरी से शुरू होगी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। आज बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना था और ये गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उनकी पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। गोवा में आयोजित महिला अंडर 23 T20 ट्रॉफी के बीच मैच में बिहार ने सौराष्ट्र को 20 रन से हरा दिया। बिहार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 120 रन बनाए। जवाब में सौराष्ट्र की टीम 6 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। इधर बंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए महिला अंडर 19 एक दिवसीय ट्रॉफी मैच में बिहार ने मेघालय को 58 रन से पराजित किया। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोल स्थित पहाड़पुर बहियार गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से सराय रंजन थाना क्षेत्र के खेतापुर धर्मपुर गांव से कुख्यात अपराधी वीरेंद्र सदा को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक देशी पिस्तौल और कारतूस समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। किशनगंज के पौवाखाली थाना में पुलिस ने 5000 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त कर इसे नष्ट कराया। वहीं कटिहार थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला स्थित रेलवे केबिन के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि शराब को झाड़ी में छिपाकर रखा गया था। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारण जिले की यात्रा को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, छपरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू। दैनिक जागरण एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर गठित संसदीय समिति की बैठक पर लिखता है, जेपीसी की पहली बैठक में ही रार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 जनवरी के बाद संभव भाजपा के 4 मंत्री होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, सिवान, झंझारपुर और महुआ में इस वर्ष होगी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत। प्रदेश में बर्फीली पछुआ हवा और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट का पूर्वानुमान। और पटना, रोहतास, सिवान समेत 5 जिलों में 16 जनवरी से नियोजन मेले का आयोजन होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।